नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शहजादे और बहरीन के राजा के साथ पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर बल दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ा, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत और कनाडा ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर भी सहमति जताई। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी, भारतीय शेयर बाजार में 1.3% की गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इससे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए दोनों देशों का आभार व्यक्त किया। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति और बिगड़ गई। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। ईरान और समर्थित संगठन मिलकर इसराइल तथा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। वहीं इसराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ हैं। खाड़ी देशों के एक समूह ने कहा कि उन्हें ईरानी हमलों का जवाब देने का अधिकार है। इसराइल की वायुसेना ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में ईरान के 24 प्रांतों पर पिछले एक दिन में 1,200 से अधिक मिसाइलें गिराईं। ईरान ने अब तक बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 9 खाड़ी देशों पर हमले किए। इससे पहले श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बात की और क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस कठिन समय में जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए राजा द्वितीय का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कनाडा सीईओ फोरम में कहा कि दोनों देश जीवंत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं और साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित भारत कनाडा सीईओ फोरम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य यह है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे।
हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली में आज कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोग भी प्राप्त हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
भारत और कनाडा ने एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को नई दिशा देने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक बातचीत को पूरा करना है। यह समझौता आर्थिक साझेदारी और व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही कनाडा से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा 2.6 अरब डॉलर के दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भारत में यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने सौर, पवन, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा, लघु जल विद्युत, उर्जारण भंडारण और क्षमता निर्माण में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कनाडा ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने जापान के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता BSA 28 फरवरी 2026 से नवीनीकृत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा आज जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार BSA का आकार 75 अरब अमरीकी डॉलर पर अपरिवर्तित है। BSA एक द्विपक्षीय समझौता है जिसके तहत दोनों देश अपनी स्थानीय मुद्राओं को अमरीकी डॉलर के बदले में विनिमय कर सकते हैं। भारत और फिलीपींस ने आज हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों का आकलन किया और समुद्री कानून पर अपने विचार साझा किए। दूसरा भारत फिलीपींस समुद्री संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव मुआनपुई सयावी ने किया। फिलीपींस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के समुद्री और महासागरीय मामलों के कार्यालय के कार्यवाहक सहायक सचिव इमैनुअल डोनाटो गुजमैन ने किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब 4 मार्च से भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वीं रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। विदेश मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति स्टब की वर्तमान पदभार संभालने के बाद भारत की पहली यात्रा होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
सेंसेक्स 1048 अंकों की भारी गिरावट से 80,239 पर बंद हुआ। निफ्टी 313 अंक टूटकर 24,866 पर दर्ज हुआ। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों की बात करें तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% और भारत के तेल आयात का 40% से अधिक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है और इस रास्ते में रुकावट से जुड़ी चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में 8% से अधिक उछाल दर्ज हुआ।
फागु होली का त्योहार आज पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नेपाली पांचांग के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन लोग होली का दहन की रस्म निभाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शहजादे और बहरीन के राजा के साथ पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर बल दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ा। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत और कनाडा ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर भी सहमति जताई। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी। भारतीय शेयर बाजार में 1.3% की गिरावट। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।